हरे कृष्ण। महाभारत की कक्षाओं में अभी तक हम लोग राजसूय यज्ञ की चर्चा कर चुके हैं और आज से चर्चा प्रारंभ करेंगे द्रौपदी वस्त्र हरण की। कैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और उसके पहले कैसे द्यूत क्रीड़ा हुई, क्या क्या कारण थे, क्या युधिष्ठिर महाराज इतने महान भक्त होते हुए भी उन्होंने जुआ खेलने की इच्छा क्यों की या जुआ क्यों खेला। ज़्यादातर जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वे लोग ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते। शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, अवैध संग करना या कोई अन्य पाप गलत कार्य करना। और फिर युधिष्ठिर महाराज तो इतने महान भक्त हैं, तो उन्होंने क्यों जुआ खेला, एक प्रश्न है। तो इसकी चर्चा करेंगे। और फिर बहुत से प्रश्न इस प्रसंग में हैं, जैसे द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ तो भीष्म वहाँ पर उपस्थित थे, द्रोणाचार्य उपस्थित थे, कृपाचार्य उपस्थित थे, विदुर उपस्थित थे। अगर दुर्योधन कोई गलत कार्य कर भी रहा था तो भी ये सारे तो वरिष्ठ थे, ये तो देख रहे थे, इन्होंने रोका क्यों नहीं। भले ही युधिष्ठिर महाराज हार गए थे, तो ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर इस प्रसंग में हमें प्राप्त होगा। तो आज से प्रारंभ करेंगे, अगर हो सका तो आज, नहीं तो अगले सोमवार को इसको समाप्त करेंगे। तो द्रौपदी का जो वस्त्र हरण की लीला है, ये भगवान के संरक्षण की लीला है। वैसे महाभारत में जितने भी प्रसंग हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य रूप को प्रकट करते हैं, चाहे वो लाक्षाग्रह हो या फिर ये द्रौपदी का वस्त्र हरण या फिर युद्ध ही क्यों ना हो। हर स्थान पर ये सारे प्रसंग बनाए इसलिए गए ताकि भगवान के भक्त वात्सल्य रूप को प्रकट कर सके, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सारे महाभारत की ये प्रमुख बात है, शुरुआत से लेकर अंत तक हम यही देखते हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, कैसे भगवान को भक्त प्रिय हैं। और इसीलिए पांडवों जैसे भक्तों का अपमान भगवान सहन नहीं करते। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि अगर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी को खींच कर लाया जा रहा था, भरी सभा में दुशासन उसकी साड़ी पकड़ कर खींच रहा था, भगवान क्या कर रहे थे? क्यों भगवान ने ये सारी अनुमति दी, क्यों होने दिया, पहले क्यों नहीं रक्षा की, इसकी भी चर्चा करेंगे। ये प्रश्न द्रौपदी ने श्री कृष्ण से बाद में किया था, तो इसकी भी चर्चा होगी। तो ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर इस प्रसंग में हमें मिल जाएंगे। तो जब राजसूय यज्ञ हो गया और अब युधिष्ठिर महाराज का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया और दुर्योधन कुछ समय वहां रहा और उसने वो ऐश्वर्य देखा, और क्या देखा दुर्योधन ने, कि रोज युधिष्ठिर महाराज के महल में, राज्य में 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जा रहा है, रोज 10,000 ब्राह्मणों को सोने की थाली में खिलाया जा रहा है। और इतना ऐश्वर्य, इतना धन आया, इतना धन आया कि जिसकी कोई गणना नहीं, और दुर्योधन ही उसको इकट्ठा कर रहा था। दुर्योधन को सेवा थी कि जो भी हीरे जवाहरात मोती सब लाते थे वो दुर्योधन को देते थे, दुर्योधन रख रहा था संभाल संभाल कर। तो ये देख देख कर कि कितना ऐश्वर्य हो रहा है, दुर्योधन का द्वेष बढ़ गया। फिर दुर्योधन एक दिन उस महल में घूमने लगा जो महल बना था नया, मय दानव ने बनाया था। और क्योंकि ये मय दानव ने बनाया था तो ये बड़े मायावी ढंग से बना था, तो दुर्योधन को पता नहीं था। दुर्योधन चलने लगा, ऐसा वर्णन महाभारत में कुछ वर्णन किए हैं कि कैसे दुर्योधन को एकदम भ्रम हुआ। दुर्योधन चलने लगा और उसने अचानक एक जगह पर देखा कि पानी है वहां पर, तो दुर्योधन ने अपने कपड़े ऊपर कर लिए, धोती इत्यादि जो पहने थे वो ऊपर कर लिए और धीरे से ऐसे पांव रखने लगा, तो देखा तो वहां पानी नहीं, वो तो जमीन ही थी। और दुर्योधन एकदम हैरान हो गया और इधर भीम इत्यादि ने देखा तो वो हंसने लग गए जोर जोर से, क्योंकि स्वाभाविक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति चल रहा है, अचानक वो कपड़े ऊपर करके धीरे से एक पैर रखने लगे तो आप सब भी हंसेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, वहां कुछ नहीं है, पानी नहीं है। तो दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दुर्योधन चल के चले गए, दूसरी जगह पहुंचे तो वहां भी वैसा ही पानी। दुर्योधन ने कहा ये सब धोखा है, और दुर्योधन आराम से चल दिए। और जैसे ही चले वहां असली में पानी था, वो उसमें गिर पड़े पूरा कपड़ों के साथ। और फिर वहां पर अर्जुन थे, भीम थे, नकुल, वो सब जोर जोर से हंस पड़े, द्रौपदी थी, द्रौपदी हंस पड़ी। और फिर तुरंत अर्जुन ने कहा नहीं नहीं चलो कपड़े ला कर दो, दूसरे कपड़े ला कर दिए। एक जगह जाने लगे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा है और दरवाजा खुला हुआ है, बंद दरवाजा नहीं है। तो दरवाजा खुला था तो भी दुर्योधन सीधे चले गए, तो जैसे ही गए तो पता चला वो दरवाजा नहीं, दीवार थी। और एकदम उनको मुंह पे जोर से लग गई चोट, क्योंकि अभी सोचिए आप ऐसे दरवाजा खुला आप आराम से जा रहे हैं, बट वहां दीवार है। और एक जगह गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है, उनको लगा ये भी दीवार होगी, तो वो धक्का मारने लगे खोलने के लिए। दरअसल वो खुला हुआ था दरवाजा, और जैसे ही धक्का मारा वो नीचे गिर पड़े वहां, क्योंकि कुछ था ही नहीं, खुला हुआ था। तो ऐसे जब बहुत जगह हो गया तो दुर्योधन का बहुत जगह अपमान हो गया। और सोचिए किसका हो रहा था, दुर्योधन जो दरअसल राजा था, अपने तो घर में राजा था वो, तो उसका इतना अपमान, कहीं पर द्रौपदी हंस दी, कहीं पर भीम हंस दिए, कहीं पर अर्जुन हंस दिए, कहीं पर अन्य लोग भी हंसने लगे, बाकी लोग भी खड़े होकर हंस लेते थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने ऐसे बहुत जगह देखा तो बड़ा उसका अपमान हो गया, उसने सहन किया, चुपचाप कुछ कहा नहीं। लेकिन उसके हृदय में द्वेष बहुत बढ़ गया, क्योंकि उसने ऐश्वर्य देखा युधिष्ठिर महाराज का, और फिर ये अपमान भी हुआ। द्वेष के कारण उसने उसके मन में एक अग्नि जलने लगी। और जब वे लोग वापस आ रहे थे, वो शकुनी इत्यादि, अपने घर की ओर, अपने महल की ओर, तो दुर्योधन बहुत चिंता में था। शकुनी ने देखा और शकुनी ने पूछा कि दुर्योधन क्या बात है, तुम इतनी चिंता में क्यों, ऐसा क्या हो गया है? तो दुर्योधन ने कहा कि मुझसे युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखा नहीं जा रहा। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि दुर्योधन बहुत गरीब व्यक्ति था, खाने के लिए पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था। वो भी राजा था, उसके पास भी भंडार था, उसके पास भी मुद्राएं थी, उसके पास भी धन था, सोना था, चांदी थे, राज्य था इतना बड़ा, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन उसको द्वेष हुआ युधिष्ठिर का ऐश्वर्य देखकर। तो जो अपने पास है उससे प्रसन्नता नहीं हुई, ये द्वेष है। कि व्यक्ति जो अपने पास है उससे प्रसन्नता तो छोड़िए, सब होते हुए भी उसका हृदय जलने लगता है। दुर्योधन का हृदय जल रहा था, अग्नि जल रही थी, उससे सहन नहीं हो रहा था कि युधिष्ठिर को इतना ऐश्वर्य और हमें कुछ नहीं। कुछ नहीं ऐसा नहीं था, बहुत कुछ था उसके पास, लेकिन ये द्वेष के लक्षण हैं। तो जब भी द्वेष बढ़ता है तो हम अपने पास जो चीजें हैं या भगवान ने हमें जो दिया है उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो हमारे पास नहीं है उस पर चला जाता है। देखिए जीवन भर हम इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। अगर जो चीजें भगवान ने हमें दी हैं केवल उसके लिए हम धन्यवाद देते रहें उन्हें, ये मान ले कि भगवान ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर, इतना सब मुझे दिया है, मैं योग्य नहीं हूं इसके लिए, लेकिन भगवान ने मुझे दिया है, तो कितने आनंद में हम रहेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ठीक है जो भी भगवान ने दिया, लेकिन वो क्यों नहीं दिया मुझे, दूसरों को दिया, दूसरों को दिया कोई बात नहीं, हमें सोचना चाहिए जो हमारे लिए सही है वो भगवान ने किया, और ये भगवान करते भी हैं। जिस जीव के लिए जो सही होता है वही करते हैं भगवान, केवल हम उसे समझ नहीं पाते, इसलिए हम विरोध करते हैं, हम द्वेष करते हैं, हम भगवान से प्रश्न करते हैं। लेकिन अगर हमें यह विश्वास हो जाए कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करते, एक भगवान ही हैं जो किसी जीव के साथ अन्याय नहीं करते, अगर यह विश्वास हो जाए तो हम सदैव संतुष्ट रहेंगे। लेकिन हमें यह विश्वास नहीं, हम सोचते भगवान ने उनको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, दिखता है ये। तो द्वेष ऐसी अग्नि है जो अभी भी व्यक्ति को जलाती है, भविष्य में भी उसको प्रसन्न नहीं रहने देती, जो चीजें हैं उसका आनंद नहीं लेने देती। दुर्योधन अपने महल में रहकर आनंद ले सकता था, उसके पास तो बहुत सारे थे, दास दासियां, ऐश्वर्य, राज्य, शक्ति, सब कुछ थी, लेकिन वो एक भी चीज का आनंद नहीं ले पा रहा था। ये द्वेष है, और द्वेष उत्पन्न होता है आसक्ति से, क्योंकि दुर्योधन आसक्त था अपनी सत्ता से, दुर्योधन आसक्त था भोग से। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु। राग मतलब आसक्ति, द्वेष, आसक्ति और द्वेष से विमुक्त होना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो ये जीने नहीं देते हैं। और इस जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग द्वेषी हैं, कोई थोड़े स्तर पर, कोई बड़े स्तर पर, और इसीलिए सब दुखी हैं। द्वेषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, दुर्योधन बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है, कभी सुखी नहीं रहा, जीवन भर सुखी नहीं रहा, मरने तक सुखी नहीं था। जब वो मर भी रहा था, उसकी जंघा तोड़ दी थी भीम ने, पड़ा हुआ था, बस इंतजार कर रहा था कब मृत्यु आए। अश्वत्थामा आया उसके पास, हमारे सब लोग मारे गए हैं, कोई बचा नहीं, केवल अश्वत्थामा बचे थे, दो और लोग बचे थे। उस समय भी दुर्योधन ने उसका तिलक किया, मैं तुम्हें प्रधान सेनापति बनाता हूं। कोई बचा ही नहीं, ना सेना थी ना कुछ था, तीन ही लोग बचे थे, तो मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं, जाओ पांडवों का वध करो, मुझे पांचों का सर लाके दो। द्वेष मृत्यु के समय तक, आप सोचिए, कम से कम उस समय वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी थी, पड़ा हुआ था, बस मृत्यु का इंतजार था, कभी भी मर सकता था, ये वो भी जानता था। लेकिन ऐसे समय पर भी वो अश्वत्थामा से कहता कि जाओ उनके सर लाके दो मुझे, क्यों, कि मरने से पहले मैं देख लूं कि वो भी मर गए हैं, हाँ अभी संतुष्टि से मरूंगा। देखिए कितना द्वेष है व्यक्ति को, कम से कम मरने के समय तो उसे सोचना चाहिए था कि मैंने पांडवों के प्रति बड़ा अन्याय किया, मेरी सारी सेना समाप्त हो गई, मेरे सारे भाई मर गए, भीष्मदेव मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, भीष्मदेव मरने वाले हैं, द्रोणाचार्य चले गए, सारे लोग मर गए महान, मेरी वजह से इतने सारे महान व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, मेरे सारे भाई चले गए, सेना का नाश हो गया, अब कम से कम मैं पांडवों से क्षमा मांग लूं, और मैं भी मरने वाला हूं, अगर अभी पांडवों के सर मिल भी जाए तो मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं मरने वाला हूं, वो जानता था। लेकिन द्वेष, उस समय भी उसने ये नहीं कहा अश्वत्थामा से कि अश्वत्थामा हमारी सारी सेना समाप्त हुई, ये अपराध अनर्थ हो गया, अब एक काम करो पांडवों को बुलाओ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, नहीं, उस समय भी वो द्वेष। तो देखिए द्वेष कहां तक जाता है, मृत्यु तक साथ नहीं छोड़ता। तो जीवन भर वो प्रसन्न नहीं रहा, मृत्यु के समय भी प्रसन्न नहीं था। वैसे दुर्योधन में बहुत अच्छे गुण भी थे, ऐसा नहीं है, महाभारत में लिखा है दरअसल उसका नाम था सुयोधन, ये तो अपने गलत कार्यों के कारण वो दुर्योधन हो गया, वैसे सुयोधन, लेकिन उसके अंदर अच्छे भी गुण थे। जिस समय अश्वत्थामा पांच सर लाकर देता है, मरने वाला है दुर्योधन, अश्वत्थामा ने पांच सर ला के दिए, मैंने पांडवों को मार दिया, दुर्योधन ने उन सरों को पकड़ा बहुत आनंद लेने के लिए कि कहां कौन सा भीम का सर है देखूं, कौन सा अर्जुन का सर है, लेकिन जैसे ही सिरों को पकड़ा वो बड़े कोमल थे, दुर्योधन ने कहा ये पांडवों के सर नहीं है, ये किसको मारा तुमने, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने कहा मैं तो पांडवों को मारा, और फिर देखा तो वो पांडवों के द्रौपदी के पुत्रों के सर थे, और उस समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, तुमने बच्चों को मार दिया, तो उसके अंदर भी अच्छे गुण थे, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन में कोई अच्छा गुण नहीं था, लेकिन द्वेष ने उसके सारे गुणों को छुपा दिया, उसके सारे गुणों को उजागर नहीं होने दिया। हम लोग भी जब चर्चा करते हैं महाभारत में, हम कभी दुर्योधन के गुणों की चर्चा नहीं करते कि दुर्योधन के अंदर ये गुण थे, लेकिन दुर्योधन में थे, जैसे हमने कई बार बतलाया है कि युद्ध के समय जब अर्जुन ने जाकर वो पांच तीर मांगे, युद्ध होने वाला है, अगले दिन भीष्म ने घोषणा कर दी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा, ये पांच तीर अचूक हैं, निश्चित इन पांचों से उनका वध होगा, दुर्योधन ने कहा मुझे दे दीजिए रात में, रात का पता नहीं, आप किसी को बांट दें कुछ कर दें, मैं रख लेता हूं, सुबह लीजिएगा। दुर्योधन ले गए, कृष्ण ने अर्जुन को भेजा दुर्योधन के पास जाओ मांग कर लेकर आ। तो देखिए दुर्योधन के गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे समय में जब दुर्योधन से आकर अर्जुन ने मांगे कि मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आपने मुझे वरदान दिया था एक समय बहुत पहले, आपने कहा था जो भी चाहो मांग लो मैं तुम्हें दूंगा, उस समय दुर्योधन कहता है मैं अपने वचन पर अडिग हूं, मांगो अर्जुन क्या चाहते हो, राज्य चाहते हो मैं तैयार हूं देने के लिए। जिस राज्य के लिए वो लड़ रहा था, जिस राज्य के लिए उसने कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा पांडवों को, अर्जुन को कहता है राज्य चाहिए ले जाओ, अर्जुन ने कहा नहीं मुझे वो पांच तीर चाहिए। और देखिए दुर्योधन के गुण, वो जानता था कि ये पांच तीर केवल मेरी विजय के लिए बहुत आवश्यक है, कल अगर मैंने ये भीष्म को दे दिए तो निश्चित मेरी विजय होगी, लेकिन अपने वचन को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने वो पांच तीर दे दिए। तो क्या गुण नहीं थे दुर्योधन में? अगर बहुत बुरा होता बोल देता कि कोई मैंने वचन नहीं दिया भूल जाओ वो तीर वीर कुछ नहीं दूंगा मैं तुम्हें, युद्ध करो, लेकिन गुणों को उसके द्वेष ने छुपा दिया। तो इसीलिए हर व्यक्ति में गुण होते हैं, लेकिन जब वो द्वेष उत्पन्न कर लेता है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति, मनुष्य के प्रति, अन्य मनुष्य के प्रति, उसको जब द्वेष हो जाता है तो उसके गुण सारे छुप जाते हैं। इसीलिए जब हम महाभारत के चरित्रों को देखते हैं तो सब में कुछ ना कुछ गुण हैं, अच्छे गुण हैं, लेकिन उनके गुण छुपा दिए जाते हैं, उनके बुरे द्वेष के कारण या लोभ के कारण, घृणा के कारण। और दूसरी दृष्टि में ये भी समझाया जाता है इससे कि केवल गुणों का होना परिपूर्ण नहीं है, अगर मनुष्य में कुछ गुण हैं तो वो पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उन गुणों का संबंध भक्ति से होना चाहिए, उन गुणों का संबंध भगवान से होना चाहिए, तब गुणों की परिपूर्णता होती है, तब गुण पूरे खिल कर आते हैं, तब गुण जब प्रकट होते हैं व्यक्ति में तो उसके गुणों की चर्चा होती है। आज हम लोग युधिष्ठिर के गुणों की चर्चा करते हैं, अर्जुन के करते हैं, भीम की करते हैं, दुर्योधन की नहीं करते, दुशासन की नहीं करते, युयुत्सु की नहीं करते, आगे चलकर हम वर्णन करेंगे ये युयुत्सु का, बहुत सुंदर, उसके अंदर बहुत अच्छे गुण थे, अभी जब द्रौपदी का प्रसंग आएगा तब भी वर्णन आएगा। तो क्यों? क्योंकि भगवान से संबंधित नहीं है, इसलिए उन गुणों को बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आत्म साक्षात्कारी पुरुष महत्व नहीं देते। दूसरे शब्दों में हमारी कला, हमारे गुण, हमारे अंदर जो भी शक्ति है उसका महत्व तब है जब वो भगवान से जुड़े, अन्यथा कोई लाभ नहीं। हमारे अंदर बहुत अच्छी गाने की शक्ति कला हो सकती है, बोलने की कला हो सकती है, हमारे अंदर कुछ और करने की कला हो सकती है, लेकिन जब तक वो भगवान से ना जुड़े वो व्यर्थ है। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि हमारी वाचा, हमारे बोलने की पूर्णता तब है जब हम कृष्ण के लिए बोले। अपनी सारी इंद्रियों को, हमारे बोलना है तो कृष्ण के लिए बोलना चाहिए, सुनना है तो कृष्ण का विषय सुनना चाहिए। हम अपनी इंद्रियों को जब कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तब हमारे गुणों की पूर्णता होती है, अन्यथा वो गुण व्यर्थ हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि अगर अपने सारे प्रयासों से न उत्पादयेत यदि रतिम, अगर रति उत्पन्न नहीं हो रही किसके लिए, विश्वक्सेन कथासु यः धर्म स्वनुष्ठितः पुंस विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम्। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इवन भक्ति कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, श्रम एव हि केवलम्, केवल श्रम है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रयास कर लेना चाहिए कि हम लोग अपने सारे गुणों को भगवान से संबंधित करें, भगवान से जोड़ें। तो अगर किसी व्यक्ति में द्वेष है, जैसे दुर्योधन में था, तो वो द्वेष को कैसे भगवान से जोड़ सकता है? हमने कहा कि हमारे अंदर जो भी है गुण, उनको भगवान से जोड़ लेना चाहिए, या उसको भगवान से जोड़कर उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे क्रोध करता है व्यक्ति, तो क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम भगवान के प्रति जो अपराध करते हैं या भक्तों के प्रति जो करते हैं उनके प्रति हम क्रोध करें, जैसे हनुमान जी ने रावण के प्रति किया, तब ठीक है। तो द्वेष को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? क्या हम किसी से द्वेष करके भगवान की सेवा कर सकते हैं? नहीं, द्वेष को केवल समाप्त करके ही भगवान की सेवा में लगाया जाता है, क्योंकि हम किसी से द्वेष नहीं कर सकते। द्वेष आसक्ति से उत्पन्न होता है और आसक्ति हमें श्री कृष्ण से दूर करती है। तो इसीलिए द्वेष, इसको हमें समाप्त करना चाहिए, द्वेष को रखना नहीं चाहिए हृदय में, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन ने शकुनी से कहा कि मेरा हृदय जल रहा है अग्नि में, मैं सहन नहीं कर पा रहा। और शकुनी ये तो चाहते ही थे कि इस पूरे कुरु वंश का नाश हो। क्यों ऐसा चाहते थे शकुनी? उनकी बहन थी, गांधारी तो उनकी बहन थी, अपनी ही बहन का वंश का नाश करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये प्रण लिया था शकुनी ने, क्योंकि जिस समय शकुनी के पिता ने धृतराष्ट्र से गांधारी के विवाह की अनुमति दी, शकुनी को पसंद नहीं आया। लेकिन शकुनी के उस समय राजा नहीं थे शकुनी, तो अपने पिता का विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें लगा जब भीष्म आए गांधार नरेश के पास कि आपकी पुत्री गांधारी, इसका मैं विवाह अपने वंश में कराना चाहता हूं, तो उस समय शकुनी को लगा कि शायद पांडु के लिए मांगने आए होंगे, तो बड़े प्रसन्न हुए। गांधार जो राजा थे उस समय उनको भी यही लगा, वो भी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन भीष्म ने कहा कि मैं बड़े पुत्र धृतराष्ट्र के लिए मांगने आया। अब जो राजा थे गांधार नरेश, उन्होंने मना क्यों नहीं किया? वो मना कर सकते थे कि नहीं, मैं अपनी पुत्री को एक अंधे के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि अंधे थे धृतराष्ट्र, सब लोग जानते थे, तो क्यों नहीं किया? वो करना चाहते थे लेकिन वो घबरा गए। भीष्म आए थे स्वयं, और भीष्म कोई योद्धाओं में कोई बहुत साधारण योद्धा नहीं थे उस समय भी। ऐसा नहीं था कि भीष्म की कोई ठीक है मना कर दिया, युद्ध कर लेंगे, क्या होगा, नहीं। तो वो सोच रहे थे कि अगर मैंने मना कर दिया तो भीष्म अकेले ही हमारी सारी सेना को समाप्त कर सकते हैं और फिर कुरु वंश से हमारा वैर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हां कर देता हूं तो सदैव के लिए हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कोई कुरुवंशी कभी हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। देखिए पहले के समय में लोग संबंध इसलिए भी किया करते थे। हम लोग देखते हैं राजाओं की कई पत्नियां होती थीं, राजा यहां जाते थे, विवाह करते थे वहां, उसका कारण होता था, संबंध होने के कारण वो सुरक्षित हो जाते थे, कोई फिर उनको उन पर विरोध नहीं कर सके। तो इस कारण से शकुनी के पिता ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होगा। लेकिन शकुनी को यह अच्छा नहीं लगा और शकुनी ने सोचा कि मेरी बहन और एक अंधे के साथ जीवन भर। तो उस समय उन्होंने प्रण लिया कि आज भीष्म के शक्ति के कारण हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं, पिताजी को देना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपनी शक्ति से अर्थात अपनी बुद्धि की शक्ति से इस कुरुवंश का नाश करूंगा। और इसीलिए वो गांधार छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर, अपने बेटे को राज्य पर बिठाकर वो पूरा समय यहां पर रहने लगे, पूरा समय बचपन से दुर्योधन को सिखाना ये करो वो करो, पांडव तुम्हारे शत्रु हैं इत्यादि। वह तो शकुनी से जब उन्होंने कहा तो शकुनी ने कहा कि हां ये तो ठीक है, उनके पास बहुत लक्ष्मी आ गई है, तो एक काम करते हैं, उस लक्ष्मी को हम छीन लेते हैं। दुर्योधन ने कहा कैसे छीन सकते हैं, क्या उनसे युद्ध करें, कौन सा कारण है अब युद्ध करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। देखो युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा खेलने में बड़ा आनंद आता है, द्यूत क्रीड़ा में तुम बहुत सरल उपाय है, तुम उसको द्यूत के लिए बुलाओ और मैं द्यूत खेलने में एक्सपर्ट हूं। उस समय ऐसा कहते हैं कि उनके राज्य में या और पूरे स्थानों में शकुनी से ज्यादा कोई दक्ष नहीं था खेलने में, बहुत दक्ष थे। तो उन्होंने कहा मैं हूं, इसीलिए तुम उनको बुलाओ और हम लोग खेलेंगे और उनका सारा राज्य ले लेंगे। तो जितना भी, जितनी शक्ति आज उसकी तुम देख रहे हो, जितना धन उसका, वो सब हमारा होगा। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अर्जुन ने, भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने इतनी मेहनत करके सब जगह से इकट्ठा किया, वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे वाह, उसने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शकुनी ने कहा बुलाओ। तो उसने कहा कि लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। तो उसने कहा तुम थोड़ा उनको कहो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जाके कहिए, शकुनी से कहा, मैं कहूंगा तो पिताजी मानेंगे नहीं, धृतराष्ट्र। अब वो राजा थे, जब तक वो आदेश नहीं देंगे हो नहीं सकता, और युधिष्ठिर भी नहीं आएंगे जब तक वो आदेश नहीं देंगे। अगर दुर्योधन बोलेगा कि नहीं आ जाओ तो युधिष्ठिर मना कर देंगे, बड़े भाई हैं, नहीं नहीं ठीक नहीं है। लेकिन अगर धृतराष्ट्र कहेंगे तो आना पड़ेगा, तो आप जाके कहिए। तो शकुनी ने कहा ठीक है। तो शकुनी चले गए धृतराष्ट्र के पास, वापस आए धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र ने पूछा कैसे हैं, सब ठीक हैं, दुर्योधन कैसा है। शकुनी ने कहा बाकी सब ठीक है, लेकिन दुर्योधन को देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा क्यों, क्या हुआ? उसका सारा शरीर सफेद होता जा रहा है। धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र वैसे देख नहीं सकता था, तो क्यों, क्या हुआ मेरे पुत्र को? पता नहीं, बहुत दुखी है, बड़ी चिंता में है, सारा शरीर सफेद हो गया है, ठीक से खा नहीं रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, शकुनी ने बोल दिया। तो धृतराष्ट्र ने जैसे ही सुना घबरा गए, भागे गए वहां, उसने और बाकी कुछ नहीं कहा। तो भाग कर गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन को देखने लगे, देखने उनको पकड़ा और क्या हुआ, क्या बात है, मैंने सुना तुम्हारा शरीर सफेद हो रहा है, तुम बहुत कमजोर हो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें, अरे तुम राजकुमार हो, तुम्हें क्या यहां पर कोई कमी है, मुझे बताओ मैं पूरी करता हूं, क्या कमी है, क्या तुम्हें खाने में कमी है, तुम्हारे दास दासियों में कमी है, राज्य में कमी है, क्या कमी है बताओ। दुर्योधन ने कहा नहीं, सब कुछ ठीक है, खाने में कोई चिंता नहीं, रहने में कोई चिंता नहीं, राज्य में कोई चिंता नहीं। तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा क्या बात है? उसने कहा मेरी चिंता यह है कि युधिष्ठिर के पास मुझसे ज्यादा धन है, यही मेरी चिंता है। और फिर उन्होंने बहुत, दुर्योधन ने कहा कि मुझसे सहन नहीं हो रहा, तो आप उन्हें बुलाइए द्यूत क्रीड़ा में, हम लोग उनसे सब कुछ ले लेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा देखो मुझे विदुर को पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ विदुर से पूछ कर करता हूँ, तो मैं विदुर से पूछूंगा और तब बताऊंगा तुम्हें। तो उन्होंने विदुर को बुलाया, विदुर से पूछा, विदुर ने कहा आप क्या चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं? विदुर ने ऐसे ही कहा आप विनाश करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है द्यूत क्रीड़ा इत्यादि। तो उन्होंने दुर्योधन से समझाया, धृतराष्ट्र ने जाके दुर्योधन को समझा, पहले भी समझाया, वो समझाने लगे विदुर से मिलने से पहले ही कि धृतराष्ट्र ने बोले ये ठीक नहीं है द्यूत क्रीड़ा वगैरह, ये नाश का कारण होती है और तुम क्यों इतना द्वेष करते हो? युधिष्ठिर तुमसे प्रेम करता है, जो भी उसके पास है वो तुम्हारा ही है, क्या कभी युधिष्ठिर तुम्हें मना करेगा अगर तुम जाकर उसके राज्य में रहोगे या जाकर उसके धन का भोग करोगे? युधिष्ठिर मना नहीं करेगा। तो जो कुछ भी युधिष्ठिर का है वो तुम्हारा ही है, हम लोग दोनों एक वंश के हैं, तो तुम क्यों ऐसे द्वेष कर रहे हो? हाँ अगर ये राज्य लक्ष्मी किसी और के पास होती, कोई और वंश में होती तब ठीक था, ये तो हमारे ही घर में है, तुम्हारे ही भाई है, तो तुम क्यों द्वेष कर रहे हो? और ये द्यूत क्रीड़ा, ये जुआ खेलना, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा कि पिताजी मुझे इतना द्वेष हो रहा है, मुझे इतनी जलन हो रही है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा आत्महत्या कर लूंगा। देखिए द्वेष कितना तीव्र हो सकता है, कोई आत्महत्या करने की बात है दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने कहा मैं मुझसे सहन नहीं हो रहा हूं, या तो आप इसकी अनुमति दीजिए या तो वो धन मेरे पास आना चाहिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अब धृतराष्ट्र तो बहुत आसक्त था अपने पुत्र से, तो उससे सहन नहीं हुआ, वो सुन नहीं सका कि मेरा पुत्र आत्महत्या कर ले। तो उसने कहा ठीक है बहुत, मैं बात करता हूँ विदुर से। तो जब विदुर से बात की, विदुर ने कहा आप तो विनाश की बात कर रहे हैं, इससे केवल भाइयों में फूट पड़ेगी, उनका शत्रुता बढ़ेगी। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने, उन्होंने कहा जाओ तुम अभी जाओ युधिष्ठिर के पास, एक पहले सभा का निर्माण करो। बहुत बड़ी सभा बनाई गई, वह वर्णन है महाभारत में कितने बड़ी सभा बनी, और वहां पे फिर द्यूत क्रीड़ा होगी, तुम युधिष्ठिर को बुला के लाओ। सभा का निर्माण उन्होंने कर दिया, उसके बाद विदुर गए। अब विदुर जब धृतराष्ट्र की आज्ञा से, धृतराष्ट्र का संदेश लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे, तो युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया, लेकिन युधिष्ठिर ने देखा कि इनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, विदुर खुश नहीं है। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है, आप ऐसे क्यों आए हैं? तो विदुर ने कहा कि एक नई सभा बनाई गई है, तुम्हारी सभा को देखकर वहां भी एक सभा बनी है, और अभी नई बनी है इसलिए मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूं कि तुम वहां पर आओ और उसमें विराजमान हो उस सभा में, और महाराज का ये संदेश है, बार बार उन्होंने कहा महाराज का संदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि तुम द्यूत क्रीड़ा में आनंद लो। तो युधिष्ठिर ने कहा द्यूत क्रीड़ा तो अच्छी बात नहीं है, ये जुआ खेलना तो अच्छी बात नहीं है, आप क्यों मुझे ऐसी बात कह रहे हैं? हाँ लेकिन आप कह रहे हैं तो सही होगा, क्योंकि आप कभी गलत नहीं कहते, लेकिन आप मुझे ऐसी बात कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य। तो देखिए ये पहला प्रमाण यहां से कि ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर खेलना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर की बड़ी इच्छा थी और उन्होंने सब कुछ हार दिया। युधिष्ठिर ने मना किया कि ये ठीक नहीं है, ये द्यूत क्रीड़ा, ये खेलना, आप जाकर संदेश दीजिए महाराज को कि ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मुझे महाराज ने बुलाया है, वो मेरे पिता के समान है, तो अगर एक पिता पुत्र को आदेश दे रहा आने के लिए तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? और वैसे भी क्षत्रियों के लिए एक नियम होता है कि अगर कोई चुनौती देता है, वचन लिया होता है क्षत्रियों ने, विशेष करके युधिष्ठिर ने लिया था कि अगर कोई उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए या युद्ध के लिए पुकारे तो मना नहीं कर सकते। वैसे क्षत्रियों का नियम था कि अगर कोई उन्हें युद्ध के लिए पुकार रहा है तो उन्हें बोल सकते नहीं अभी नहीं आऊंगा, बाद में देखता हूं, थोड़े समय बाद में, उनको जाना ही होता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि एक तो नियम के अनुसार, लेकिन दूसरा आदेश है धृतराष्ट्र का जो मेरे पिता के समान है, तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा विदुर से कि मेरी कोई इच्छा नहीं है जाने की, मैं जानता हूं कि द्यूत केवल विनाश का कारण है और भाइयों में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए, लेकिन आप जो कहें वो मैं करूंगा। उन्होंने विदुर से पूछा मेरी इच्छा नहीं है, धृतराष्ट्र का आदेश है, मगर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बताइए। तो विदुर संकट में पड़ गए मना करें तो धृतराष्ट्र के आदेश का पालन नहीं होता, वो तो संदेश लेकर आए, उनको केवल पालन करना है, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा हैं, वो मंत्री हैं, और जाने को कहते हैं तो वो जानते हैं कि आगे इतना बड़ा विनाश होगा, तो अब उनके लिए क्या था। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कह दिया कि मेरा कार्य तुम्हें संदेश देना था, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन महाराज का आदेश है, अब तुम्हें जो करना है वो करो। युधिष्ठिर महाराज उनके ऊपर डाल रहे थे कि आप बताइए, ताकि आगे जाके वो कह सके मेरी इच्छा नहीं थी, विदुर ने कहा था इसलिए मैं गया। और विदुर ने उनके ऊपर डाल दिया, मेरी इच्छा नहीं है लेकिन तुम जैसा चाहो वो करो, महाराज का आदेश है, संदेश मैंने तुम्हें सुना दिया, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो युधिष्ठिर ने विचार किया कि उनके लिए दो धर्म है अभी, एक धर्म जो निचला धर्म है, अर्थात एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें क्या करना है वो मना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी राजा, वो तो सम्राट हो चुके हैं अभी, तो मना कर सकते हैं। लेकिन दूसरा धर्म पिता के समान जिनको वो आदर देते हैं, उनका आदेश, उनके आदेश का पालन। तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मुझे आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में भी कभी कभी दो ऐसी स्थितियां आती हैं जिसमें हमें दो को चुनाव करना होता है। व्यक्ति के लिए अधर्म और धर्म का चुनाव करना बड़ा सरल है। अगर आपके पास दो चुनाव आए, ये अधर्म है ये धर्म है, हम धर्म को चुन सकते हैं। लेकिन जब दो धर्म आए, दोनों धर्म हैं, अब आपको उसमें से एक को चुनना है, तब क्या चुनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। हम हमेशा ऊंचे धर्म को हमें चुनना चाहिए। एक उदाहरण देते, मान लीजिए कोई सैनिक है, सेना में कार्य करता है, वो घर पर गया हुआ है और उसकी पुत्री का विवाह कर रहा है। अब अगले दिन विवाह होने वाला है, एक पिता के लिए पुत्री का विवाह बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, कन्यादान करना है, उसके बिना विवाह नहीं होगा। अब अगले दिन विवाह है और आज उसको अर्जेंट मैसेज मिलता है, सूचना मिलती है कि युद्ध शुरू हो गया है, तुरंत वापस आइए। जब युद्ध हो जाता है तो सारे सैनिकों को बुला लिया जाता है, चाहे कहीं भी हो, कोई भी छुट्टी पे गए हो, सब कैंसिल कर दी जाती है। तो इसको संदेश मिला है कि आपको तुरंत अपनी कंपनी में, अपनी बटालियन में अपने कमांडर को रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट कीजिए। तो अब इसके लिए दोनों धर्म हैं, एक धर्म है राष्ट्र की रक्षा करना, दूसरा धर्म है अपने पिता धर्म को पालन करना। तो पिता के धर्म का पालन करे या सैनिक के धर्म का पालन करे, अभी उसके पास चुनाव करना है। कल विवाह है पुत्री का, स्वाभाविक है, इतना बड़ा अवसर, उसको ही कन्यादान करना है। और लेकिन यहां पर संदेश आया कि 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, युद्ध शुरू हो गया। तो अब ये दो कर्तव्य हैं उसके लिए, क्या वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए रुके या देश की रक्षा के लिए चला जाए, क्या करना चाहिए उसे? देश के लिए जाना चाहिए। देखिए सब, आप लोग सब बड़ा सरल है, राइट? दोनों कर्तव्य हैं, लेकिन उसको देश की रक्षा क्यों? क्योंकि वो ऊंचा कर्तव्य है। देश की रक्षा करके वो हजारों करोड़ों लोगों की रक्षा कर रहा है, और एक अगर अपनी पुत्री के लिए रुक जाता है तो वो दोनों धर्म है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसी तरह कभी कभी हमारे जीवन में भी हम दुविधा में आते हैं। ये दुविधा थी इस समय युधिष्ठिर महाराज के लिए, दोनों धर्म हैं तो कौन से धर्म का पालन करें, अगर पिता को मना करें या क्षत्रिय धर्म को मना करें। लेकिन उन्होंने ऊंचे धर्म को चुना, सिद्धांत ऊंचा था कि पिता के आदेश का पालन, पिता समान जो धृतराष्ट्र है उनका आदेश का पालन जरूरी है, और उसके लिए अगर मुझे राज्य भी त्यागना पड़े तो ठीक है। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसी दुविधा आए जहां हमारे पास दोनों धर्मों में से चुनाव करना हो, तो हमें ऊंचे धर्म को चुनना चाहिए, ऐसे धर्म को चुनना चाहिए जो केवल हमारी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित ना हो। हमें दूसरों के लिए त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग दूसरों को कष्ट ना दें, हमें अपने कष्ट की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति के मुख पर मुस्कान लाने के लिए हमें कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो वो कष्ट ऐसे आनंद से जो दूसरों को कष्ट देकर मिला है, हजार गुना अच्छा है। अर्थात दूसरों को कष्ट देकर जो हमें आनंद मिलता है, उससे अच्छा है कि हम कष्ट ले लें किसी एक व्यक्ति को आनंद देने के लिए। तो ये ऊंचा धर्म है। जब हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक धर्म क्या है? एक साथ रहने का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरी वजह से कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो। ये एक अच्छे समाज का बहुत महत्वपूर्ण नियम है, विशेष करके भक्त समाज का। जब भक्त समाज हो, भक्त एक साथ रहें, तो हर भक्त को यह प्रयास करना चाहिए कि मेरी वजह से किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो। अगर हर भक्त ये सिद्धांत का पालन करेगा तो कितना अच्छा वातावरण हो जाएगा समाज में। तो ये समाज में रहने का एक महत्वपूर्ण नियम है, तो हम सबको ये पालन करना चाहिए। तो अब युधिष्ठिर महाराज के पास आकर पूछा, जब कहा गया तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, वो जाएंगे द्यूत क्रीड़ा के लिए। युद्ध अब जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि धृतराष्ट्र का आदेश युधिष्ठिर महाराज को मिला था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मुझे जाना चाहिए और ये द्यूत क्रीड़ा का पालन करना चाहिए। और उधर दुर्योधन इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसको ये तो पता था कि धृतराष्ट्र ने बुलाया है तो निश्चित आएगा, युधिष्ठिर आएंगे, लेकिन फिर भी चिंता थी। तो ये द्वेष से वो जल रहा था। तो खैर, धृतराष्ट्र ने यहाँ पर तैयारियाँ सारी कर दी थीं, और उधर युधिष्ठिर महाराज भी सारी तैयारी करके अपने भाइयों के साथ, द्रौपदी, अन्य स्त्रियों, इन सब के साथ फिर वो हस्तिनापुर में आए। अपने राज्य को त्याग कर काफ़ी समय बाद अब वो हस्तिनापुर में आए थे, और अब वो द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ करने वाले थे। तो द्यूत क्रीड़ा, ये अब जैसे हमने बताया कि हर प्रसंग भगवान के गुणगान का प्रसंग है, तो अब से द्यूत क्रीड़ा का जो वर्णन प्रारंभ होगा, इसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान समय समय पर भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसका वर्णन अगले सोमवार से हम लोग करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा, कोई द्वेष पीछे दीजिए माइक। हरे कृष्ण।
दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब इंद्रप्रस्थ में जाता है दुर्योधन, जब पानी का जैसा उसमें गिर जाता है, उसमें द्रौपदी बोलता है कि अंगार का पुत्र अंगार है, ऐसा कुछ द्रौपदी बोलती है वहां पर?
महाभारत में ऐसा वर्णन नहीं है।
जो हमने सीरियल देखे हैं उसमें ऐसा बोला था कि अंगार का पुत्र।
हमारे लिए महाभारत व्यास देव ने लिखी है, रामानंद राय ने नहीं, क्या रामानंद सागर ने नहीं। सर, टीवी वाले मसाला बहुत लगाते हैं, सादा कुछ दिखाते नहीं, क्योंकि उनका वो बिजनेस ही उसी पे चलता है। अगर वो सीधे सीधे दिखा देंगे कौन देखेगा? वो उसको घुमा फिरा कर उसने ऐसा किया वैसा किया, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। इसीलिए शास्त्र को टीवी में नहीं, आचार्यों से सुनना चाहिए, सही दृष्टि से उससे समझ में आता है। नहीं तो बहुत कुछ हम लोग सुनते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो गिर गया उसने, हमने तो बहुत कुछ सुना इस प्रसंग के बारे में, जो महाभारत में कुछ भी नहीं लिखा। महाभारत में केवल एक स्थान पर वर्णन है कि द्रौपदी हंसी, बस। बाकी जगह अर्जुन हंसे, भीम हंसे, अन्य लोग हंसे, वर्णन एक ही जगह पर वर्णन है, द्रौपदी हंसे बस। अब उसको लोगों ने बना दिया, द्रौपदी ने ऐसा कहा वैसा कहा। महाभारत में तो व्यासदेव ने नहीं लिखा, कहीं और हो भी सकता है, कहीं और वर्णन किया गया हो, लेकिन जहां तक हमने पढ़ा है उस महाभारत में ही वर्णन नहीं है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न।
अगर नहीं पूछा जाता तो इतना सब कुछ नहीं होता, तो उनको जब प्रस्ताव लेके गए थे उनको ये सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ।
लेकिन किसी न किसी से तो विवाह कराना ही था ना धृतराष्ट्र का, ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसा था कि भीष्म देव भले वो धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन एक राजा के तरह थे, राजपुत्र थे वो, तो कोई साधारण बात नहीं होती है वो व्यक्ति के लिए। बाकी सारी थी, उनमें बल था, उनमें बुद्धि थी, ऐसा नहीं था कि वो हमेशा बेड पर पड़े रहते थे। बहुत सारा उनको अस्त्र शस्त्र चलाने आते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कुछ थे। तो भीष्म का कर्तव्य था कि वो देखें कि एक पिता की तरह कि जो भी उनके पुत्र हैं उनको वो उनका जैसा भी विवाह इत्यादि कराना, ये उनका कर्तव्य था। तो उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए भीष्म ने किया, तो जो भीष्म ने किया वो गलत नहीं है। हाँ, दूसरी तरफ गंधार नरेश मना कर सकते थे, कह सकते थे मेरी पुत्री को मैं नहीं देना चाहता, ठीक है भीष्म वापस आ जाते। ऑफकोर्स वापस तो नहीं आते, तलवार निकल जाती वहां पर। तो पहली चीज कि भीष्म केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। दूसरी चीज, अगर हम ये सोचने लगे कि अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, ये नहीं होता तो वो नहीं, वो तो सब होना ही था, है ना। अभी कहें कि अगर देखिए युधिष्ठिर महाराज खुद बोल रहे हैं कि द्युत क्रीड़ा से कितना नुकसान होता है, नाश होता है, फिर वो खेलने क्यों गए, मना कर देते। तो एक बात ये भी है कि कुछ चीजें तो होनी ही होती हैं। अब भगवान चाहते थे अंत में सब लोग आकर मरे, इतना बड़ा युद्ध भगवान इतने दिन से योजना कर रहे थे, इतने पहले से। अब आप उनकी योजना में सोच रहे, नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता, नहीं, भगवान ने योजना की थी कि ये सब होगा। और वैसे भी सारी चीजों को सोचना व्यक्ति की क्षमता नहीं है। हम आज ही से सारे भविष्य को नहीं सोच सकते कि ये चीज हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि जिस समय उन्होंने ये प्रस्ताव रखा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये शकुनी उनका भाई ऐसा करेगा, और कौन सोच सकता था उस समय। ज्यादा से ज्यादा भीष्म ने ये सोचा होगा कि ये लोग मना करेंगे, बस उतना है। तो कभी नहीं सोचा होगा कि जहां पर विवाह हुआ है वहीं पर आकर ये नाश करेगा, ऐसा कौन सोच सकता है, आप बताइए। स्वाभाविक है कि जहां पर आपकी बहन का विवाह हुआ है भाई चाहेगा कि वो घर सुरक्षित रहे, कौन भाई चाहेगा कि उसका नाश हो। तो भीष्म कभी ये सोच भी नहीं सकते थे, कोई बाहर वाला नाश का सोचे ठीक है, ये तो घर वाला व्यक्ति कर दिया ऐसा। तो इसीलिए ये सारी चीजें, एक तो एक दृष्टि से भगवान ने योजना की, दूसरा इतना सोचना भीष्म कभी सोच नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति नाश करेगा। तो इसीलिए भीष्म ने जो किया वो उनका कर्तव्य था, अपने कर्तव्य को उन्होंने पूरा किया, तो उसमें भीष्म का कोई दोष नहीं है। ठीक है, हाँ जी। हरे कृष्ण।
कलयुग में माया का दोष है, माया से ज्यादा अधर्म करते हैं, उसका
कलयुग में अधर्म होता है। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों से अधर्म हो जाता है, उससे कैसे बाहर आना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ ये सही है, कलयुग में हमसे हर क्षण हर समय अनजाने में माया के प्रभाव से अधर्म हो जाता है, तो हमें कैसे उससे बचना चाहिए। जो अधर्म होता है उसके कई उपाय हैं। सबसे पहला हमें ज्ञान लेना चाहिए, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना अधर्म कम होगा। आज जो अधर्म बढ़ रहा है क्योंकि ज्ञान नहीं, हम जो सोचते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम करते नहीं, जो शास्त्र में कहा है उसको करें। तो सबसे पहली चीज ज्ञान लेना चाहिए, तो ज्ञान से अधर्म कम होगा। कम से कम हमें पता चलेगा ये सही है गलत है, आज तो हमें ये भी नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है, हम अपने मन से सोचते हैं कि ये सही है गलत है। तो इसलिए पहली चीज ज्ञान लेना चाहिए। तो भी अधर्म होगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान आने पर अधर्म नहीं करेगा व्यक्ति, क्योंकि पूर्ण ज्ञान में नहीं होगा तो हो सकता अधर्म कर ले। तो इसीलिए अनजाने में अधर्म हो को कम करने के लिए पहली चीज ज्ञान लीजिए। दूसरा चीज, इस कलयुग में अधर्म होना बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हमसे किसी के प्रति कोई अपराध हो जाता है और हमें पता चलता है तो हमें उस अपराध के लिए उसका जो निवारण है वो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है तो उससे जाके क्षमा मांगनी चाहिए, या फिर हम कोई और अपराध करते तो उसका निवारण शास्त्र में दिया गया है तो उसको करना चाहिए, अर्थात पश्चाताप होना चाहिए। और कलयुग में सारे अधर्मों से बचने का एक सबसे बड़ा उपाय है हरिनाम जप। हम जितना जप करते हैं ये हमें पापों से बचाता है, क्योंकि हमारे मन को शुद्ध करता जाता है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है हम पापों से दूर होते जाते। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना, पश्चाताप करना और भगवान के नाम को लेना, इससे हम अधर्म को जितना कम हो सके उतना कर सकते हैं। ठीक है
ना।
हाँ जी। हाँ जी। हाँ, पिछले जन्म का भी जो हमारा कर्मों का फल है उसके कारण भी हमसे इस बार में गलती होती है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों को भी हरिनाम नाश कर सकता है, इतनी शक्ति है भगवान में, भगवान के नाम में। तो इसीलिए पिछले जन्मों के कर्मों के भी को भी नाश करना, पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे सामने स्थिति आती है, उस स्थिति में कैसे हमें आचरण करना है वो फिक्स नहीं है, वो हमारे ऊपर है, वो हमारी स्वतंत्रता है। तो इसलिए उस स्वतंत्रता का जीव या तो सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। जब हमें ज्ञान नहीं होता भक्ति का, हम जप नहीं करते तो हम दुरुपयोग करते हैं, तो हम गलत कार्य करते हैं, फिर और उसका पाप कर्म बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमें ज्ञान है तो फिर हम उसका सदुपयोग करते हैं उसी स्वतंत्रता का, और फिर हम अच्छे कार्य करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ हाँ
हाँ
प्रभाव बहुत। हाँ, इसका अगली बार हम वर्णन करने वाले हैं। प्रश्न ऐसा है कि युधिष्ठिर महाराज के ये जुआ खेलने का जो निर्णय उन्होंने लिया, इससे केवल उनके जीवन में नहीं बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होने वाला था, उनके भाइयों का, उनका इत्यादि राज्य के लोगों का। तो उनको ये सोचना चाहिए था निर्णय, जबकि वो जानते थे कि ये गलत है, फिर भी उन्होंने क्यों किया, इसको अगली बार वर्णन कर रहे हैं पूरे विस्तार से। हाँ, आत्म साक्षात्कार के लिए किस तरह का प्रयास करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? अपने आप को जानना। आत्म यानि हम, आत्मा, साक्षात्कार यानी उसको जानना, उसको उसके सामने आना। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है आत्मा के विषय को जानना, अपने आप को जानना। और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रभुपाद समझाते हैं कि सबसे पहले आत्मा को जानना होता है, अपनी स्थिति को, और फिर आत्मा का भगवान से क्या संबंध है इसको जानना होता है, फिर उस संबंध के आधार पर आत्मा के क्या कर्तव्य हैं उसको जानना है, और अंत में उन कर्तव्यों को पूरा करना, ये आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को सबसे पहले जानना चाहिए कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और फिर आत्मा का कर्तव्य, आत्मा की स्थिति क्या है, भगवान से क्या संबंध है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उस चीज को जानना और फिर उसके अनुसार कार्य करना, अर्थात भगवान की सेवा में लगना। तो एक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को समझना चाहिए कि कैसे हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, और फिर उसको समझकर भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना चाहिए। वेदों में तीन ही चीजें कही गई हैं, कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय हय प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वाक्य कय। वेदों में तीन ही चीजें कही गई हैं, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। संबंध अर्थात कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, अभिधेय कैसे उस संबंध को भक्ति के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, और प्रयोजन उसका क्या फल है। और ये आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमें भक्ति के मार्ग पर लगना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना, ज्ञान अर्जित करना और भगवान की सेवा करना। ठीक है, अभी भगवान के दर्शन होंगे और ये पुरुषोत्तम महीना है, तो हम लोग फिर इसमें पुरुषोत्तम योग का